इंद्र बड़े चकित थे अर्जुन की ऐसी बाण कौशल को देख करके कि देखो पानी को ही रोक दिया बाणों के द्वारा। तो इंद्र ने जो है ना पर्वत का एक शिखर जो है ना उठा करके अर्जुन के ऊपर मारा, तो बाणों के द्वारा उसको भी पाउडर बना दिया अर्जुन ने। तब इंद्र जो है ना हार गए। जब इंद्र पराजित हुए तथा प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे, उस समय श्री कृष्ण ने इंद्र से यह वर मांगा कि उनकी अर्जुन से मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए। देखो कृष्ण जो ना वरदान मांगते हैं, क्या वरदान मांगते हैं, अर्जुन के साथ मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी ना टूटे। यद्यपि श्री कृष्ण समस्त वरदानों के स्वामी हैं, परंतु फिर भी कितना आश्चर्य है कि वे अपने भक्ति के प्रति प्रेम के भूखे रहते हैं। जिस प्रकार गोपियों ने कात्यायनी का व्रत करके श्री कृष्ण की प्राप्ति का वरदान मांगा था, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इंद्र से अर्जुन के साथ अपनी मित्रता का वरदान मांगते हैं। श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ने एक साथ संग बजाए, इसका अर्थ है कि उनकी ओर से युद्ध की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। संग ध्वनि का मतलब यही है, जैसे यहाँ मंदिर में पुजारी संग ध्वनि करते हैं, मतलब क्या है कि अब भगवान के दर्शन की बिल्कुल तैयारी है, आओ जल्दी दौड़ करके आओ दर्शन करने के लिए। संग बजने का मतलब है बस अब काम शुरू होने वाला है। संग ध्वनि कभी कभी अपनी ओर से युद्ध की तैयारी की सूचना देने के लिए की जाती है, कभी कभी हर्ष की सूचना देने के लिए, कोई बहुत खुशी का समाचार हो तो संग ध्वनि की जाती है, या विजय की सूचना देने के लिए, विजय प्राप्त हुई है तो संग ध्वनि की जाती है। मंदिरों में भगवान के दर्शन तथा आरती प्रारंभ होने के पूर्व संघ बजाया जाता है। संघ ध्वनि से मंदिर के आसपास स्थित लोगों को पता चलता है कि अभी भगवान के दर्शन तथा आरती प्रारंभ होने वाले हैं। तो पहले किसी के पास घड़ी नहीं होती थी, है ना, अभी तो घड़ी है तो भाई सबको पता है कि 4:30 बजे सवेरे मंगल आरती होगी, तो पहले से आ जाते हैं, है ना। पहले घड़ी नहीं होती थी, तो जैसे संघ ध्वनि हुई तो सब भागते थे अपने काम को छोड़ करके कि अरे भागो भागो भगवान के दर्शन शुरू हो गए। इस प्रकार यदि संभव हो तो भक्तगण तेजी से टोलकर उसी प्रकार भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जिस प्रकार भगवान की बंसी ध्वनि सुनकर गोपियां अपने सभी कार्यों को छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए भागती थीं। वृंदावन में भगवान बंसी ध्वनि करते थे और यहां पर भगवान संघ ध्वनि कर रहे हैं। जिस प्रकार वृंदावन में भगवान अपनी बंसी ध्वनि से भक्तों को आकर्षित करते थे, उसी प्रकार भगवान यहाँ कुरुक्षेत्र में अपनी संघ ध्वनि से भक्तों को आकर्षित करते हैं। भगवान का काम है आकर्षित करना, है वृंदावन में बंसी ध्वनि, कुरुक्षेत्र में संघ ध्वनि। भगवान की संघ ध्वनि भक्तों को अभय प्रदान करती है तथा अभक्तों को भय प्रदान करती है। क्या भक्तों को अभय प्रदान करती है, भक्तों को अभय और अभक्तों को भय, ठीक है ना। अगर यहां आ नहीं तो वहां आ रहेगा, भक्तों तो आ नहीं है ना तो अभय हो गया, और यहां आ लग गया अभक्तों तो भय, अभक्तों को भय और भक्तों को अभय प्रदान करती है। नरकासुर का वध करने के लिए जब श्री कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर गए थे, तो उस समय उन्होंने अपनी संघ ध्वनि के द्वारा वहां के महान योद्धाओं के हृदय विदीर्ण कर दिए। इतना ही नहीं बल्कि संघ ध्वनि के द्वारा उन्होंने इतना कर्कश शब्द उत्पन्न किया कि वहां पर रखे हुए युद्ध करने के जो यंत्र थे वे सभी टूट गए। अपनी संघ ध्वनि से ही मशीनों को तोड़ दिया भगवान ने, नरकासुर की मशीनों को। ये संघ ध्वनि उसी प्रकार थी जिस प्रकार प्रलय काल की वर्षा के समय वज्रपात होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के संघ की ध्वनि कभी कोमल तो कभी कठोर होती है। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण कोमल संघ ध्वनि करते हैं तथा अभक्तों को भयभीत करने के लिए कठोर संघ ध्वनि करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। अब जब भगवान कृष्ण अपने परम धाम चले गए, द्वारका समुद्र में डूब गई। अर्जुन जो है द्वारका से कृष्ण की पत्नियों को लेके आए हस्तिनापुर, और कृष्ण के विरह में अर्जुन जो है अब कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण की दोस्ती का स्मरण कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का 15वां अध्याय है। इसमें इस 19 श्लोक हैं जिनमें अर्जुन कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे हैं। तो ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सूत गोस्वामी कहते हैं, भगवान कृष्ण के विख्यात मित्र अर्जुन कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त थे। देखो, जीवन भर कृष्ण के साथ रहे, अब कृष्ण का वियोग प्राप्त हुआ तो अर्जुन को कितना शोक हो रहा है। एवं कृष्ण सखा कृष्ण भ्राता राज्ञा विकल्पिता नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षिता। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय सूख गए, अतएव उनकी शारीरिक काम भी चली गई। अब भगवान का स्मरण करने पर उत्तर में एक शब्द भी वो बोल नहीं पाए। युधिष्ठिर ने प्रश्न किए अर्जुन से बहुत से, लेकिन अर्जुन किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। शोके ने सुचन वदन हृत्सरो जो हत प्रभा विभम तवेमा विभम तमेवानुस्मरण ना तकनो प्रतिभासी तुम। उन्होंने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोक के अश्रुओं को रोका। वे अत्यंत दुखी थे क्योंकि भगवान कृष्ण उनकी दृष्टि से दूर हो गए थे और वे उनके लिए अधिक अधिक स्नेह का अनुभव कर रहे थे। कृष्ण संतम विशुचा पाणिना मृज नेत्रयो परोक्षेण समुन्नंद प्रणयोत्कंठ कातराम। भगवान कृष्ण को स्मरण करके, उन शुभकामनाओं को स्मरण करके, उनके आशीषों का स्मरण करके, घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों का स्मरण करके और उनके रथ हांकने का स्मरण करके अर्जुन को बहुत सी बातें स्मरण आई। वो रथ हाका करते थे, मेरा कितना घनिष्ठ पारिवारिक संबंध था मेरा उनके साथ। स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध आया और वे तेजी से सांस लेते हुए बोलने लगे, सख्यम मैत्रीम सौहृदम चा सारत्यादिषु संस्मरन नृपम अग्रज मिथ्याह बाष्प गंगदया गिरम। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। मैंने उनको अपना घनिष्ठ मित्र समझ दिया था जबकि वे अनंत असंग ब्रह्मांडों के स्वामी थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा धोखा दिया। किस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। मेरा सब पराक्रम वो ले गए, अपने साथ ले गए, चुरा ले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम महन। जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड शून्य हो जाता है, शून्य जिस तरह प्राण के बिना शरीर होता है, ऐसे पूरा संसार क्या है जिनके, है ना, बेकार है, तिनका है पूरा संसार। यस्य क्षण वियोगेन लोको य प्रिय दर्शन ओखे न रहितो यस्य मृतका प्रोच्यते यथा। अब अर्जुन याद कर रहे हैं कि उनकी कृपा उनकी शक्ति से ही मैंने बड़े बड़े काम किए थे अभी तक। उनकी कृपामयी शक्ति से मैं उन समस्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य भेदन कर सका और द्रौपदी से विवाह कर पाया। किसकी कृपा से? उनकी कृपा से। यत संत्रयां द्रुपद के हेमपागतानां राज्ञाम स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानाम तेजो हृतम खलु मया भिहतश्च मत्स्याम संजीकृतेन धनुषा दिगतः च कृष्णम्। फिर अर्जुन याद करते हैं कि उनकी संगति से मैंने कौशल पूर्वक शक्तिशाली इंद्रदेव को जीत लिया, जिनको जीत पाना बहुत कठिन था। देवताओं के साथ इंद्र को मैंने परास्त किया, जिनकी शक्ति से, जिनके कारण इस तरह अग्निदेव खांडव वन को जला सके, उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर ने हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण किया, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हुए और आपको आदर प्रदान कर सके। जिनकी कृपा से मैं दानों ने ऐसी सभा बनाई थी जहां पानी जमीन दिखाई पड़ रहा था और जमीन पानी दिखाई पड़ रही थी, ऐसी सभा बनाई थी। यत्सन्निधा वहम खांडव मंगलेदाम इंद्रम च सामर गणम तनसा विजित्य लब्धा सभा मय कृताद्भुत शिल्प माया दिव्यो हरन पतयो बलिमंधरे ते। और जिनकी कृपा से आपके भाई भीमसेन ने जरासंध का वध किया, ये कृष्ण की ही कृपा थी, नहीं तो जरासंध को मारना भीमसेन के लिए आसान नहीं था। जरासंध इतना महान था जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी, भीमसेन ने मार डाला। ये सारे राजा जरासंध के यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको भगवान ने छुड़ाया और उन राजाओं ने फिर आपका यशोगान किया। तो कृपा किसकी थी? कृष्ण की थी। या तेजसा नृपिरोमृ महन मखार्थम आर्योनुजस्तव गजायुत सत्वमीर्यं तेनाहृता प्रमथनाथ मखाय भूपां यन्मोचिता सदनयन बलिमंधरे ते। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी के बालों को खोलने का दुस्साहस किया था। आपकी पत्नी यानी द्रौपदी के बालों को खोलने का जिन्होंने दुस्साहस किया, उनकी पत्नियों के बाल खुलवा दिए, मतलब उनको मरवा डाला, है ना। तो उन भगवान जो है ना, वो भगवान अब हमसे दूर चले गए हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया था। उस समय वो द्रौपदी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी, इसलिए भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना दी कि जैसे तुम्हारे बाल खुले हुए हैं, तो जिन दुष्टों ने तुम्हारे बालों को खोला उन दुष्टों की पत्नियां जो ना अपने बालों को खोलेंगी। पत्न्या सवादिमग क्लिप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कबरम कितवे सभायाम स्पृष्टम विकीर्य पदयो पतिताश्रु मुख्याम यस्तत् स्त्रियो कृते हतेस विमुक्त केशाम। फिर अर्जुन याद कर रहे हैं भगवान की कृपा को, क्या हमारे वनवास के समय, वनवास काल में 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले कौन थे? दुर्वासा मुनि आ गए, संकट में डालने के लिए दुर्वासा मुनि आ गए। उस समय उन्होंने केवल जूठा ग्रहण करके हमको बचाया, हमारा जूठन उन्होंने खा करके हमको संकट से बचाया। देखो असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हमारा जूठन खा करके दुर्वासा मुनि के संकट से बचा दिया, कि भगवान देखो इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करते हुए मुनियों ने अनुभव किया कि वे भोजन से पूर्णतया संतुष्ट हो गए हैं और तीनों लोगों को संतुष्ट कर दिया। हमारा जूठन खा करके तीनों लोगों को संतुष्ट कर दिया। कैसे भगवान कैसे इनके गुण हैं। यो नो जुगो व्यवन ए ते दुरंधकृत्रां दुर्वासोरि रचितां अयुतं शाकान्न सिस्टम प्रयोजयत त्रिलोकी तृप्ताम मंत्र सलिले विनिमग्न संघ। ये उन्हीं का प्रताप था कि मैं अकेले युद्ध में शिव जी को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। मैं अकेला था और शंकर जी को भी चकित कर दिया अपने युद्ध के द्वारा। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। हाँ, इस तरह वे शिव जी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अलावा मैं शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच गया, जहां मुझे आधे इंद्रासन पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इंद्र अपना आधा आसन किसको देता है? किसी को नहीं देता। अर्जुन के अलावा किसी को अपना आधा आसन नहीं दिया इंद्र ने। या तेज सात भगवान युधिशूल पाणि विस्मापिता स गिरिजो श्रीमदान ने जमे अन्य विचाह मुने विकले वरेण प्राप्तो महेंद्र भवने मदासनार्थम। जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के सभी देवताओं ने नेवात कवच नामक असुरों को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया। देखो, मेरी भुजाओं का आश्रय लिया किसने? सब देवताओं ने। देवताओं की कितनी शक्ति होती है और मैं मनुष्य हूं, है ना? लेकिन एक मनुष्य का आश्रय लिया सब देवताओं ने, मेरे भुजाओं का आश्रय लिया। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। हाँ, इस समय मैं भगवान से विहीन हो गया हूं जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तत्रैव मे विहरतो भुज दण्ड युग्मं गांडीव लक्षण मराति वधाय देवान् सेन्द्राश्रिताय तनुभावित माज मीढ तेनाह मध्य मुसिदा पुरुषेण भूम्नाम्। फिर अर्जुन याद करते हैं उनकी कृपा को। कौरवों की सेना शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक बड़े बड़े मगरमच्छ थे, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उस सेना को पार कर सका। ये उन्हीं की कृपा थी कि मैं गऊओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका विराट नगर में। जब अज्ञातवास था पांडवों का, तो कौरवों ने पांडवों को ढूंढने के लिए ये चाल चली, राजा विराट की गऊओं का अपहरण किया, ये सोच करके अगर पांडव छिपे हैं तो अपने आप सामने आएंगे और सामने आएंगे तो हम उनको प्रकट कर देंगे तो दोबारा 12 साल का वनवास करना पड़ेगा उनको। लेकिन सौभाग्य से वो 1 साल गुप्तवास के पूरे हो गए थे अज्ञातवास के। तो अर्जुन ने क्या अकेले रथ में बैठ करके पूरी सेना को हराया और बड़े बड़े महारथियों के मुकुट उतार लिए। देखो कितना आश्चर्य, अकेले अर्जुन ने सबको बेहोश कर दिया और मुकुट उतार लिए और उनके बहुमूल्य आभूषण उतार लिए और वस्त्र उतार लिए पूरी सेना के, किसी को छोड़ा नहीं। भीष्म में द्रोण कर्ण है कृपाचार्य किसी को नहीं छोड़ा और अर्जुन अकेले थे। तो कृपा किसकी थी? कृष्ण की थी। यद बांधवा कुरु बलांति मनंत पारम एक और तेन ततरे हमतीर्य सत्वम प्रत्याह तम बहुधनम च मया परेशान तेजास्पदम मणिमयम च हृतम शिरोभ्याम। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी, अपनी दृष्टि से ही सबको मार दिया था। बाद में तो फिर मैंने मारा, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी दृष्टि से सबको मार दिया था। अपनी दृष्टि से उन सब की कल्पना उत्साह को निकाल लिया। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर ये सब कर दिखाया। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमु स्वदम्भ्रम
राजन्य वर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथ यूथ पाना आयुर्मनांत चदृशा सा ओज आर्छन।
भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रवा सुशर्मा तल्य जयद्रथ और बाह्लिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से मेरा बाल बांका भी ना कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज अस्त्रों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रों से अप्रभावित रहे। जैसे प्रहलाद की रक्षा की नरसिंह भगवान ने, वैसी मेरी रक्षा की भगवान कृष्ण ने।
या दोष मा प्रणहितम गुरु भीष्म कर्ण नत्रिगर्ध सल सेम बालिका जय अस्त्राण्य मोघ महिमानी निरूपितानि नोपस्त सुर हरिदास में वासुराणी।
ये उन्हीं की कृपा थी जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह ना की। मेरे घोड़े प्यासे थे तो उनके लिए पानी निकालने के लिए मैं रथ से नीचे उतरा, अपना बाण मार करके तालाब बना दिया जमीन में घोड़ों को पानी पिलाने के लिए, और बिल्कुल स्वच्छ पानी। आजकल कहाँ मिलता है स्वच्छ पानी, है बिल्कुल बिस्लेरी का पानी, जो ना तालाब बना दिया अपने बाण से। और शत्रु ने मुझे नहीं मारा उस समय, क्यों? कृष्ण की कृपा थी इसलिए। ये तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाकर रखा। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं की, प्रणाम नहीं किया, क्या किया? सारथी बनाया। मैं कितना मूर्ख हूं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा और सेवा करते हैं, और मैं उनको क्या करता था? सारथी बना करके रखता था अपना। सौते व्रता कुमति नात्मद ईश्वरों में यद पाद पद्म अभवाय भजन दिव्याम माम श्रांत वाह मरेयो रथिनो भूविष्ठम न प्राहरण्यद अनुभाव निरस्त चित्तम।
हे राजन, उनके परिहास और उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी और हंसी से अलंकृत होती थी। कैसे बोलते थे? हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन, ऐसे बोलते थे। और मैं क्या बोलता था? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, है ना? वो बोलते थे हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना और उनकी समस्त हार्दिकता की अब मुझे याद आ रही है। नर्मान्युदारुचरस्मित शोभितानी हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदन संजल्पितानि नर देव हृदय स्पृशानी स्मर तुर्लुठन्ति हृदयम मम माधवस्य। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ सो जाते थे, एक दूसरे के साथ 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 बैठे रहते और साथ साथ घूमते फिरते रहते हम लोग, कुछ काम नहीं था, सोते थे, बैठते थे, घूमते फिरते थे साथ साथ। और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें ये कहकर बोलता चढ़ाता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। व्यंग करता था मैं उनको, उनके ऊपर। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी अंत संत बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को और या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है।
सैयासन अटन वे कथन भोजनादि स्वे क्यान्वय सरितवान निधि विप्रलंदा सख्यो सखे वे पितृवंतन यस्य सर्वम सेहे महान महिदया कुमते रघम में। तो ये हमने 19 श्लोक पढ़ के सुनाए जो अर्जुन के उद्गार भगवान कृष्ण के वियोग में है। तो आज के श्लोक में संजय ने कहा है कि अर्जुन कृष्ण ने एक साथ संघध्वनि की है, अपनी ओर से युद्ध की तैयारी की घोषणा के रूप में। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूंगा? इनका प्रश्न है कि जैसा कि हमने उदाहरण दिया कि एक ब्राह्मण भगवद गीता पढ़ते थे, अशुद्ध पाठ करते थे, लेकिन वो लाभान्वित हुए। उसी प्रकार संजय ने गीता सुनाई धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र लाभान्वित क्यों नहीं हुए? लाभान्वित हुए धृतराष्ट्र भी, लाभान्वित हुए, और जीवन के अंत काल में जो है उनकी सदगति हुई धृतराष्ट्र की। तो गीता का लाभ जरूर मिला, और धृतराष्ट्र की श्रद्धा थी भगवान कृष्ण में, श्रद्धा थी, और कृष्ण का अर्जुन के साथ में कितना घनिष्ठ प्रेम है वो भी धृतराष्ट्र जानते थे। एकमात्र जो कमजोरी थी धृतराष्ट्र की वो क्या थी? दुर्योधन के प्रति मोह था, धृतराष्ट्र में आसुरी भाव नहीं था। धृतराष्ट्र को असुर नहीं कहा जा सकता, श्रद्धालु तो है ना, लेकिन साधु संग करते थे, विदुर जी का संग करते थे है ना, लेकिन असाधु संग भी करते थे, दुर्योधन का भी संग करते थे है ना। इस कारण से जो है भजन क्रिया में नहीं आ पाए, मतलब फिर अनर्थ दूर नहीं हुए, भजन क्रिया से अनर्थ दूर होते हैं ना? लेकिन हाँ, श्रद्धा के धराधार पर तो थे। भक्ति में सबसे प्रारंभ होता है श्रद्धा से, तो श्रद्धा थी धृतराष्ट्र में है ना, तो लाभान्वित हुए धृतराष्ट्र जैसे भी हो। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो क्या वो उचित है? वैष्णव लोग जो है लक्ष्मी जी की अलग से पूजा नहीं करते कभी भी है ना। लक्ष्मी जी की पूजा का विधान बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन उनके लिए जो कि भौतिक कामनाएं अपनी पूरी करना चाहते हैं है ना, लेकिन जो जन्म मरण से छूटना चाहते हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए उचित यही है कि लक्ष्मी जी की नारायण के साथ पूजा करें। ये उचित नहीं है कि अलग से लक्ष्मी जी की पूजा करें। और कोई प्रश्न? हाँ, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यहां पर बताया गया है कि सफेद घोड़ों से जुटे हुए महान रथ पर अर्जुन और कृष्ण सवार हैं, तो इसमें हमने क्या क्या बातें बताई, क्या क्या विशेषताएं बताई हैं कि सफेद घोड़ों से जुटा हुआ रथ है? हाँ, ये 100 घोड़े थे अर्जुन के रथ में, 100 घोड़े थे, किसके द्वारा दिए हुए थे?
चित्ररथ नाम के गंधर्व ने अर्जुन को ये 100 घोड़े दिए थे।
100 ये घोड़े दिए थे, तो इनको वरदान था कि इनकी 100 की संख्या में कमी नहीं आएगी कभी भी। कोई भी घोड़ा अगर मर जाए तो उसकी जगह दूसरा घोड़ा आ जाता था, और 100 के 100 घोड़े हमेशा रहते थे अर्जुन के रथ में है ना। और अर्जुन के रथ की और क्या विशेषता है? हाँ, ये जो रथ है अग्नि देवता के द्वारा दिया हुआ था अर्जुन को, और ये कहीं भी मतलब जा सकता था, आकाश में, स्वर्ग में, और पृथ्वी में, समुद्र में, पर्वतों में, कहीं भी जा सकता था, कहीं गति रुकती नहीं थी इस रथ की है? और क्या विशेषता थी? हाँ, 12 किलोमीटर की ध्वजा थी, इसमें हनुमान जी अपनी गर्दना जोड़ देते थे जब चलता था, तब तो बड़ी भयानक रथ की पहियों की घरघराहट होती थी है ना। और वो ध्वजा, ध्वजा में क्या विशेषता थी? 12 किलोमीटर की थी और कहीं रुकती नहीं थी, ध्वजा कहीं रुकती नहीं थी है ना, ये आश्चर्य है। अच्छा, बाद में क्या हुआ? ये जो रथ है अर्जुन का, जब महाभारत के 18 दिन पूरे हो गए, युद्ध समाप्त हो गया, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि रथ से उतरो, तो अर्जुन कहते हैं कि पहले आप उतरो, मैं क्यों उतरूं? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं तुम उतरो। तो अर्जुन कहते हैं कि क्या कारण है कि आप मुझे कह रहे हैं उतरने के लिए, पहले आपको उतरना चाहिए, आप सारथी हो, तो पहले आप उतरो फिर मैं उतरूं। तो भगवान कहे तुम उतरो फिर मैं बताऊंगा। तो अर्जुन जैसे उतरे तो फिर भगवान उतरे, और जैसे भगवान उतरे तुरंत रथ जो है ना एकदम अग्नि की लपटों में भस्म हो गया है। और जो ध्वजा में हनुमान जी थे वो आकाश में उड़ गए, तुरंत रथ भस्म हो गया। मतलब भगवान अर्जुन के जीवन की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए अर्जुन से कह रहे थे कि तुम उतरो पहले है। तो अर्जुन ने कहा ये क्या हुआ, तो भगवान कहते हैं ये रथ बहुत पहले ही जल चुका था है? क्योंकि बहुत से अस्त्र शस्त्रों की मार पड़ी इस रथ में, तो बहुत पहले जल चुका था ये रथ, मेरे कारण से ये रथ अभी तक रहा। और ये अग्नि रथ जो है ना जल करके कहां पहुंच गया, अग्निलोक में चला गया। अग्नि देवता ने दिया था तो अग्नि के रास्ते से वो रथ चला गया, अग्निलोक में वापस चला गया, क्योंकि इस रथ की आवश्यकता अब नहीं थी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के, श्री श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा के, श्री श्री गौणताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।